वेरिटास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर।
रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को प्रवीण परमार का प्यार भरा नमस्कार तथा आज की इस प्यारी सी सभा में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे आज का बाइबल पाठ, प्रभुवचन, कार्यक्रम युवा एवं विकास एवं भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पहले पाठ से, जो लिया गया है संत योहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 18 से 21 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
बच्चों, यह अंतिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एक मसीह विरोधी का आना अनिवार्य है। अब तक अनेक मसीह विरोधी प्रकट हुए हैं, इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय आ गया है। वे मसीह विरोधी हमारा साथ छोड़कर चले गए, किंतु वे हमारे अपने नहीं थे। यदि वे हमारे अपने होते तो वे हमारे ही साथ रहते। वे चले गए जिससे स्पष्ट हो जाए कि उनमें कोई भी हमारा अपना नहीं था। तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है और तुम सभी लोग सत्य जानते हो। मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि तुम सत्य नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम सत्य जानते हो और ये भी जानते हो कि हर झूठ सत्य का विरोधी है।
दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पहला पाठ, जो लिया गया था संत योहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 18 से 21 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार जो लिया गया है संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से 18 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था। वो आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वो साक्षी के रूप में आया, जिससे वो ज्योति के विषय में साक्ष्य दे, और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वो स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वो सच्ची ज्योति था, जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वो संसार में आ रहा था, वो संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने यहां आया, और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। वे न तो रक्त से, न शरीर की वासना से, और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वो पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। योहन ने पुकार पुकार कर उनके विषय में ये साक्ष्य दिया, ये वही है जिनके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वो मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वो मुझसे पहले विद्यमान थे। उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है।
दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार, जो लिया गया था संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से 18 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं कार्यक्रम युवा विकास, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
युवा विकास के अंतर्गत सुनिए वार्ता, भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले युवक युवतियां। दोस्तों, युवक युवतियों के संबंधों का जुड़ाव कुछ ज्यादा हो रहा है। हाँ दोस्तों, यहां हम युवा संबंधों यानी कि युवा दोस्ती की चर्चा कर रहे हैं। जवानों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण सदियों से चला आ रहा है। यह प्राकृतिक भी है यानी प्रकृति का नियम भी है। प्रत्येक युवक युवतियां एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। प्रत्येक जवान के मुंह में जवानी का लड्डू फूटता है। प्रेम, दोस्ती, आत्मीयता, अपनापन, ये सब जीवन का एक मीठा एहसास है, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव में नौजवान खड़े होते हैं वहां ये तो होना ही है। मगर बचके रे बाबा, खासकर युवतियां, इसलिए क्योंकि प्रेम के मायने बदल चुके हैं। प्रेम संबंध भी संबंध न होकर एक खोखला जुड़ाव का रूप ले चुका है। न प्रेमी विश्वसनीय रहे, न प्रेम संबंध विश्वसनीय रहे। इन दिनों दौर कुछ ऐसा चल रहा है कि प्रेम, आत्मीयता, दोस्ती, मित्रता का तात्पर्य कुछ और हो चला है। दोस्तों, आजकल प्रेम कहानी में अश्लीलता, फरेब, दिखावा, फैशन, पैसा का तड़का लग चुका है। युवक युवतियां इन दिनों जिस तड़के का स्वाद ले रहे हैं, यह कोई स्थायित्व संबंध नहीं होते, बल्कि पल भर में भरभरा कर गिरने वाले होते हैं। भावनात्मक जुड़ाव होने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि यह आत्मिक जुड़ाव कब तक टिका रहेगा, कब तक चलेगा। एक युवती और एक युवा निकटता को लेकर एक दूसरे पर अति विश्वास करते हैं, इसलिए शायद प्रेम को अंधा कहा गया है। प्रेम के आंख, कान, नाक नहीं होते, तभी तो प्रेम संबंध जात पात, ऊंच नीच, धनी गरीब से ऊपर होते हैं। प्रेमिका अपने प्रेमी में कोई कमी नहीं देखती, न सोचती है, बस प्रेम के पेंगे भरने में ही आनंद आता है। इसी तरह प्रेमी भी प्रेमिका में कोई कमी मानने को राजी नहीं होता। प्रेम की मीठी मीठी बातें करने वाले प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को कब मात देते हैं पता ही नहीं चलता। प्रेमिका की आंखें तब खुलती हैं दोस्तों, जब प्रेमी धोखा दे जाता है। मीठी मीठी बातें करने वाला, सपना दिखाने वाला प्रेमी कब बेवफा निकल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रेमी प्रेमिका के बीच कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि सिवाय पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलता। प्रेमी प्रेमिका को अपना बनाकर प्रेम संबंधों के जाल में फंसाकर कभी भी धोखा दे सकता है। ऐसे वारदात आजकल आम हो चले हैं। समस्या गंभीर हो जाती है। परिवार एवं समाज के सामने स्थितियां कई बार बदतर हो जाती हैं। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि स्थितियां संभालना मुश्किल होती हैं। अचानक हुए दुर्घटनाओं से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। शारीरिक टूटफूट का जोड़ तोड़ तो निकाला जा सकता है, पर भावनात्मक आघात का भराव जीवन में कभी नहीं होता। दिल के टूटने का घाव कभी दिखता ही नहीं है, पर इसकी पीड़ा कभी कभी जीवन में स्थायी भाव का रूप ले लेती है। यही पीड़ा मानसिक बीमारी बन जाती है, मन के किसी कोने में गांठ का रूप धारण कर लेती है, जो युवा जन को न जीने देती है न मरने देती है। मानसिक पीड़ा व भावनात्मक घाव एक ऐसा संयोग बनाता है कि धोखेबाजी एवं बेवफाई से उपजी मानसिक शून्यता उसे तोड़कर रख देती है। जिंदगी खालीपन से भर जाता है और साथ होती है तो केवल हताशा और निराशा। तो दोस्तों, आत्मविश्वास में कमी आती है, दूसरों पर भरोसा करना भी नामुमकिन हो जाता है। समाज से कटकर गुमसुम जिंदगी जीना उसकी आदत बन जाती है। दुख के पहाड़ टूट पड़ते हैं। युवाओं को इस बेवफाई और धोखेबाजी का पता चलने के बाद वे पागलपन की हद तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे युवक युवतियों से मिले होंगे आप सब जिसकी ऐसी दुर्दशा हुई होगी। वह घातक जुड़ाव से खुद को छुटकारा दिलाने में असमर्थ होते हैं और ढो रहे होते हैं भीतर ही भीतर एक बड़ा दर्द। एक बार जीवन में चारित्रिक दाग लगता है तो वह कभी नहीं मिटता। दोस्तों, पूरे समाज में छवि खराब होती है। शादी ब्याह, जन्म दिवस एवं विभिन्न अवसरों पर मिलने से लोग बात बनाते हैं और पीठ पीछे खिल्ली उड़ाते हैं। पारिवारिक माहौल भी कुछ इस तरह बनता है कि भाई बहनों पर भी इसका गलत असर पड़ता है। बेचारे भाई बहन नाहक में बदनाम होते हैं। इससे पारिवारिक स्थितियां बिगड़ती चली जाती हैं। यूं तो युवक एवं युवती दोनों पर इस बनावटी प्रेम संबंध का बुरा प्रभाव पड़ता है, पर सबसे अधिक युवतियां इसे भुगतती हैं। वे मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक एवं शारीरिक तौर पर कहीं अधिक सजा पाती हैं। सजा ऐसी जो जीवन भर नहीं मिटती, इसको कहते हैं उम्र कैद की सजा। ता उम्र बदनामी होती है। तो दोस्तों, सुनिए एक लड़की की सही दास्तां। वह नौजवान इसी गम में जीता है, मर मर कर जीता है। अपनी प्रेमिका को भुला नहीं पाया, अपनी प्रेमिका को बहुत प्यार करता था। शादी होने वाली थी दोनों की, वो युवती भी तैयार थी। दोनों के परिवार वालों में समझौता हो चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर ना जाने क्या बात हुई, लड़के से लड़की ने मुंह मोड़ लिया और किसी दूसरे से शादी कर ली। उस युवक को इतना झटका लगा इस घटना का कि अभी तक वह उस सदमे से निकल नहीं पाया है। उस युवती की याद में खूब पीने लगा। उसने अपना पूरा कैरियर बर्बाद कर लिया, उसे वह भुला नहीं पाया है। लगभग 40 साल का वह हो चुका है। अब उससे भला कौन लड़की शादी करेगी जो न तो शादी करने के काबिल है, न नौकरी करने के काबिल है। उसकी मां भी सजा की हकदार बन चुकी है। बेटी की ऐसी दशा देख मां उसे कैसे छोड़ सकती है। मां बेटी की हालत पर सिर्फ रोती रहती है, क्योंकि उसके सुधरने का कोई आसार नहीं दिखता। रिश्तेदारों ने उनसे दूरियां बना ली हैं। कोई भी पारिवारिक पर्व, त्योहार, शादी, उत्सव आदि में उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता, क्योंकि वह वहां भी पीकर पहुंच जाता है। समाज में भी उनकी यही हालत है। सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी पूछ परख लगभग खत्म हो चुकी है। अब समझिए दोस्तों, उम्र भर यह भुगतना है उस लड़के को और उसकी मां को भी। इसी तरह एक युवती अपने प्रेमी पर इतना अधिक भरोसा रखती थी कि उसने अपना सब कुछ उसे समर्पण कर दिया। युवती का झुकाव देखकर प्रेमी युवक ने खूब फायदा उठाया। युवती को बेवकूफ बनाकर उसकी वीडियो फिल्म बना ली और उसे ब्लैकमेल करने लगा। उसे मालूम तब हुआ जब उस युवक के मित्र ने उस युवती को बताया। यह सब देख सुनकर युवती दंग रह गई। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसको बेइंतहा प्यार करने वाला, हद से ज्यादा चाहने वाला प्रेमी भला उसके साथ इस तरह का छल कर सकता है। लेकिन उसकी आंखें खुल चुकी थी, पर बहुत देर बाद। उस युवती को बार बार अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि वह उस दगाबाज को क्यों पहचान नहीं पाई। उसकी लच्छेदार बातों में किस तरह वह उलझती चली गई, इसका आभास उसे तनिक भी न था। मौखिक विज्ञापन हो चुका था इसका। घर परिवार, रिश्तेदार, समाज, आस पड़ोस में ऐसी बातें फैलते देर नहीं लगती। परिवार के लोगों तक बात पहुंची, माता पिता ने सिर पीट लिया। उनको ये पश्चाताप हो रहा था कि भगवान, हमसे कहां चूक हो गई। उस युवती ने उस युवक पर अंधा विश्वास किया, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। दोस्तों, इस तरह की अनेक घटनाएं आजकल समाज में घट रही हैं। युवतियां बेवकूफियां कर रही हैं और इसका फायदा इस तरह के चालाक एवं बददिमाग युवक उठा रहे हैं। इस तरह के मामले में घर परिवार के लोग कानून तक जाने से हिचकते हैं, क्योंकि इससे लड़की को और बदनामी मिलती है, बात और आग की तरह फैलती है। इसका फायदा ये युवक उठाते हैं और गलत एवं गैर कानूनी काम कर ठाट से समाज में खुले आम घूमते हैं। इसके अलावा युवतियों को धमकाया भी जाता है इस तरह की युवतियां बेइज्जत तो होती ही हैं, भय और निराशा से भरी होती हैं और डर डर कर जीती हैं। अब श्रोताओं, आप ही बताइए, इस तरह आंख मूंद कर किसी पर विश्वास करने का ये प्रतिफल प्राप्त होता है तो क्यों ना युवक युवतियां समय रहते संभल जाएं, समझदारी से काम लें। जरा भी शंका या संशय हो तो इस रिश्ते को बहुत जल्दी बाय बाय टाटा टाटा कर दें। मन को धक्का जरूर लगेगा पर आपका जीवन संवर जाएगा। कस्में वादे खाने के बाद भी इस तरह की धोखेबाजी एवं बेईमानी से सबक ले लें। ये अच्छा होगा कि आप एक बार रोएंगी, कम से कम आपको जीवन भर रोना तो नहीं पड़ेगा। भावनात्मक अत्याचार करने वाले युवकों से समय रहते निकलने का उपाय खोज नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, समय समय पर उसे परखते रहें। प्रेमिका अपने प्रेमी को ताड़ते रहें, उसकी परीक्षा भी लेते रहें। तनिक भी संदेह हो तो ऐसे दरिंदों के बनावटी प्यार से बाहर निकलने में ही भलाई है। यही सही वक्त होता है भावनात्मक अत्याचारी के चंगुल से निकलने का, चालाक धूर्त नापाक व्यक्ति के भ्रम जाल से निकलकर स्वयं को युवतियां संभाल लें। अगर आप वक्त पर उसे अपने जीवन से झटक कर बाहर निकाल देती हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। उस दुष्टता से भरे युवक का प्रतिउत्तर आप दृढ़ता से करती हैं, दृढ़ता पूर्वक उसके भावनात्मक छल कपट का प्रतिकार करती हैं, तो आप विचारों से मजबूत बनती हैं। युवक भी ऐसी चालाक एवं पैसे भर के लिए केवल खाने पीने मौज मस्ती करने तक के लिए भावनात्मक जुड़ाव रखने वाली युवतियों से सावधान रहें। पर देखा गया है दोस्तों कि भावनात्मक अत्याचार का अधिक शिकार युवतियां ही होती हैं। अतः अंत में यही कहना उचित होगा कि इमोशनल अत्याचार भावनात्मक अत्याचार को सहने के बजाय उससे बाहर निकलना बेहतर होगा। अगर किसी ने आपकी भावनाओं से खेला है, खिलवाड़ किया है, फायदा उठाया है, तो उससे उबरने की कोशिश करें एवं जीवन को फिर से जीने की हिम्मत जुटाएं। दोस्तों, जिंदगी अनमोल है और हर तरह का घाव समय रहते भर जाता है, पर ऐसी दुर्घटनाओं से सबक जरूर ले दें। मैं उन युवक युवतियों से भी कहना चाहूंगी कि गलती करने के बाद आत्महत्या करने को सोचती हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसी हरकत आप जीवन में कभी न करें। इमोशनल अत्याचार एवं भावनात्मक अत्याचार का आप विरोध करें। यदि लड़का आपको सही नहीं दिखता है तो उसका विरोध करें, और लड़के यदि इस तरह की युवतियां कुछ ऐसी हरकतें करती हैं तो उसका भी विरोध करना सीखें।
दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा विकास और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम पुनः सुनना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर आर्काइव में यह कार्यक्रम सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज्ञा दीजिए अपने मित्र प्रवीण परमार को। धन्यवाद।